अहिंसा जो राजर्षि भरत सूखा पत्ता खाते थे, भगवान की सेवा में अर्पित करते थे, सब भगवान की सेवा में कुछ भी अर्पित नहीं करते थे, स्वयं भी लगे खाने बिना प्रसाद, बिना भोग लगाए प्रसाद खाने पत्ता भी जो खाते थे, बल्कि पहले हरिण को भोग लगाते थे, पहले उसको खिलाते थे। भगवान तो अभी उनका स्वभाव था पूजा करने का, इसी के बैठ जाते थे, कभी कभी मन तो पूरा हरिण में रहता। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरुष परिचर्या जो जिन नियमों में और यम में पुरुष की परिचर्या आदि थी, सबसे पहला नियम भगवान की सेवा, तो भगवान की सेवा के साथ साथ यम नियम सब एक 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 सा एक एक करके एक एक छूटते छूटते विजुज माना छूटते 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 कतिपय न हर गणे न कुछ ही दिनों में किल सर्व एवं उद्वसन सभी छूट गए। सर्व के बाद केव लगा रहे हैं, सभी छूट गए एक बार हैं, लेकिन बच्चा खुचा कुछ हो गया नियम को उसको भी सब छूट गया। इसके लिए कहते हैं सर्वे एवं, कोई स्नान नहीं, संध्या बंदन नहीं, माला खूटी पर रखी है, कभी एक तुलसी से भगवान की पूजा नहीं, जल से भी नहीं, कुछ नहीं, सारा नियम छूट गया, छूटते छूटते सारा नियम छूट गया। क्रमशः एक एक सह विजुज माना कतिपय न अहर गणे, कतिपय का अर्थ कुछ ही दिनों में, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगा, कुछ ही दिनों में सर्वे एवं उद्वसन उत्सन्न हो गए, नष्ट हो गए नियम। और मन में ये बात थी कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उनकी युक्ति है, आप सुनेंगे आगे क्या सोचते थे। यद्यपि जब वो भजन नहीं कर रहे थे, भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे, स्नान समय पर नहीं कर रहे थे, तो उनको ऐसा कभी कभी मन में आता था, मेरा नियम छूट रहा है, मेरी भक्ति छूट रही है, तो मन ही मन फिर संतोष करते, कोई बात नहीं। ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए, इतने बड़े कार्य के लिए छोटा सा काम छोड़ा जा सकता है। अब बताइए, अपना जप करना छोटा काम है, भगवान की पूजा करना अब छोटा काम हो गया, पूरा प्रजा का पालन छोड़ करके तो भजन करने आए और एक पशु पालन में लग गए, पूरी अगर यही करना होता है तो राजा रहते और सारे सिंहों को मरवा देते, सभी हरिण की रक्षा हो जाती। ये वन में कुछ ऐसा नियम लागू करते, ये सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का भजन करने आए और अब एक हरिण पालन में लग गए, सब नियम छूट गया। इसे बहुत सावधान रहना चाहिए, खास करके जिनके पास हरिण है। हरिण में तो छोटे छोटे बच्चे, बहुत सावधान रहना चाहिए, और हरिण नहीं, इन दोनों में बहुत आसक्ति होती है। स्त्री और पुत्र में सबसे अधिक आसक्ति होती है और इन्हीं के चलते आदमी नियमों का उल्लंघन करता है। ये रहे ठीक है, लेकिन इनसे केवल प्रयोजन भर संबंध रखा है, तो पढ़ा दे, लिखा दे, कपड़ा लत्ता जो कुछ देना हो दे, उसके लिए कमाए, लेकिन रात दिन चिंतन न करे। अरे सावधान रहना चाहिए कि उनके लिए हमारा भक्ति का नियम न खंडित हो। और कोई कोई सोचे कि भाई किसी दिन विशेष बात पड़ जाती है तो उस दिन छूट जाता है, तो एक दिन छूटा तो फिर मन में ये बात आ जाएगी कल तो छूटा है, ऐसे कोई बात नहीं, आज भी कर ले, दो दिन के बाद करेंगे। और जब 10 दिन बीतेगा तो मन कहेगा अब तो छूट ही गया, तो कोई बात नहीं छोड़। हम लोगों का ये अनुभव है, मंगला आरती में उठते समय शाम को अलार्म देते हैं, अलार्म बजता है तो वही मन जो अलार्म दिया है वो कहता है अच्छा 10 मिनट रुक जाओ, अभी समय है, 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट बीतता है तो सोचता है अच्छा और थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ, और 20 मिनट बीता तो वही मन क्या कहता है अब तो बीत गया समय, अब तो नहाने में देर होगी, इसलिए बेटर है थोड़ा सो, अब तो बीत गया समय। एक ही मन कितना पैंतरा बदलता है, इसलिए कभी भी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने कहा सुखदेव गोस्वामी न कुरियत पर ही चित सख्य मनसी हीन वस्थित है, मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत निढंगे तौर से ये आत्मा को धोखा में डालता है मन, ये भगवान की तरफ आने देना नहीं चाहता। तो इस तरह राजर्षि का एक एक करके सब नियम समाप्त हो गया। किस तरह उनकी हरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, उस आसक्ति का वर्णन सुखदेव के सामने करते हैं। राजर्षि हमेशा अपने मन में यही विचार करते रहते थे, अहो बत अयम हरण कुण कह ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रहे स्वगण सुहृद बंधुभ्य परिवर्जित शरण च माम उपसादित मामे व माता पितरो भ्रातृज्ञात जौथिकांश चयोपेय नान्यम कश्चन वेद नान्य कंचन वेद मयति विश्रब्ध अतएव मया मत्परायण से पोषण पालन प्रीणन लालनम अनुसूल अनुष्ठेय शरणोपेक्षा आसक्ति प्रपंच अहो इत्यादि इति कृतानुसंग प्रजमते अहो बत ये भी कह रहे अहो बत। अहो आश्चर्य के लिए है और बत दुख के लिए है। अहो कितना आश्चर्य है, इस काल चक्र में पड़ा हुआ यह हरिण बच्चा अकस्मात मेरे पास ला दिया गया। ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण वायर काल को ईश्वर के रथ का चरण कहते हैं, चक्का काल चक्र ईश्वर रथ चरण ईश्वर तो कृष्ण भगवान भगवान के रथ का चक्का है, चक्र है काल चक्र। और इस काल चक्र ने घूमते 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 इस बच्चे को मेरे गोद में डाल दिया, आपने दिया कि इस मातृहीन बच्चे का पालन करो। काल चक्र को ईश्वर रथ चरण कह रहे हैं, जिस इष्टदेव का मैं भजन करता हूं उन्होंने हमें ये उत्तरदायित्व दिया इस बच्चे का पालन करने के लिए। तो काल चक्र ने इसको अपने माता पिता से वर्जित कर दिया, स्वगण सुहृद बंधुभ्य परिवर्जित परिवर्जित हो गया। इसके कोई इसका न समुदाय है न इसके सुहृद है न बंधु है, जो माता पिता ही नहीं है तो और समुदाय का प्रश्न ही कर, तो उनसे बिछुड़ गया परिवर्जित और शरणम च माम उपसादित और मेरी शरण में डाल दिया गया। ये दोनों काम काल चक्र ने किया, हमने नहीं किया। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि हरण का पालन करूंगा ये मेरी गोद में आ जाए, लेकिन भगवान के काल चक्र में भगवान के रथ के पहिए में ला करके मेरे पास डाल दिया और बंधुओं से बिछुड़ा दिया। और यह भी ऐसा है, ये भी बच्चा ऐसा है कि मामेव माता पितरम ये मुझको ही अपनी माँ समझता है, ये मुझको ही अपना पिता समझता है। तो वो कहे तो समझ नहीं जाए, सब आप समझ रहे हैं। ये है आसक्ति, आसक्ति थी तो उस पशु में भी वो बुद्धि कर रहे हैं, तो पास में आकर के चाटने लगे खुजलाने लगे सिंह से, तो कहते हमको अपना पिता मानता है, हमको अपनी माँ मानता है। जिस प्रकार माँ पर विश्वास करता है हरिण, उस तरह से मुझ पर विश्वास करता है। माम एव केवल मुझे ही माता पितर अपनी माँ समझ रहा है, अपना पिता समझ रहा है। भ्रातृज्ञातन अपना भाई गोतिया परिवार जो कुछ भी है, या जो ठीक अपने संघ का झुंड का ये हमको समझ रहा है, पर हमारे अतिरिक्त किसी को जानता ही नहीं। नान्यम कंचन वेद ये अन्य किसी को नहीं जानता है, हमारे अलावा किसी को नहीं जानता, हमको जानता है और किसी को नहीं जानता। और मैं अति विश्रब्ध हूं और मुझमें अति विश्वास करता है, कितना विश्वास है, हमको अपने रक्षक समझता है, माता पिता समझता है, हम पर डिपेंड है, हमको अपना आश्रय समझता है। इसलिए मया अपनी मेरे द्वारा भी अतएव मया मेरे द्वारा भी इसका पालन होना चाहिए। जब मुझ पर इतना विश्वास करता है, ऊपर से ईश्वर में ला करके मेरे गोद में इसको दिया है,
ये मत परायण से मेरे शरण में है, इसलिए इसके पोषण पालन प्रेरणा लालन इसमें हमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अनुस्वी न ऐसी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए कि इसके चलते हमारा जप नहीं हो रहा है या पूजा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। इसके पालन में हमारा भजन छूट रहा है तो इसमें हमें दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दोष मैं जानता हूं सर्वोपेक्षा दोष विदुषक। मैं विद्वान हूं किस विषय में, कि शरणागत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शरणागत की उपेक्षा करने में बहुत बड़ा दोष है। सभी माता पिता तो यही सोचते हैं कि मेरी शरण में ईश्वर ने डाल दिया इस बच्चे को, इसके पालन के लिए भी हमारे जीवन का परमार्थ भगवत भक्ति स्वार्थ नष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, भगवान ने हमें उत्तरदायित्व दिया। शरणोपेक्षा दोष विदुषा माया, ये कहते हैं मैं जानता हूं जीवन में सबसे बड़ा दोष क्या है। सबसे बड़ा दोष है शरणागत की उपेक्षा करना। आजकल लोग धड़ल्ले बोल देते हैं कि भगवान की सेवा जरूरी है कि समाज की सेवा जरूरी है। कभी कभी लोग पूछते हैं और पूरे मानव समाज में ये धारणा छा गई है कि समाज की सेवा करो, ये सेवा करो, ये करो, करो। जरूर समाज की सेवा करनी चाहिए, लेकिन प्रथम है ईश्वर की सेवा। भगवान की भक्ति प्रथम वस्तु है, उसको करके ही और कुछ किया जा सकता है, उसको छोड़ करके नहीं। यदि भगवत भक्ति छोड़ करके कोई समाज के हित के लिए कुछ काम करे तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और आसक्ति में बंद करके इसी तरह से आदमी सोचे, शरणागत की उपेक्षा के दोष को मैं जानता हूं, इसलिए मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं होनी चाहिए इस बच्चे को। अब देखिए, अब झूठमूठ के पहले के इतिहास का उदाहरण दे रहे हैं। पहले भी बहुत से आर्ज हुए हैं, साधुजन हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, महाजन, वे सभी ऐसे शरणागत के पालन के लिए अपने जीवन का बड़ा बड़ा स्वार्थ छोड़ चुके हैं, छोड़ने त्याग दिए। अरे कुछ तो ऐसे हुए जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपने देह भी दे दिया, जैसे दधीची मुनि। तो हम तो केवल पालन कर रहे हैं, अभी तो देह दिए नहीं। ऐसा ऐसा उदाहरण ले रहे ठीक विपरीत। नूनम यार्जा साधव उपसम तीला कृपण सुहृदा एवं विधार्थे स्वार्था नदी गुरु तड़ान के क्षमते। अगर मृग के पोषण आदि में मेरी भगवत उपासना भंग हो रही है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा पहले के भी आचार्यों ने साधु पुरुषों ने करके दिखाया है। पहले जो आर्ज है, आर्ज का अर्थ होता है शिष्ट, जो वेद की मर्यादा में रहते हैं उनको आर्ज कहते हैं। नून निश्चित साधव, साधु का अर्थ है परोपकार करने में जिनका स्वभाव है, परोपकारशील, दूसरे का काम बनाने में, काम साधने में जो तत्पर रहते हैं उनको साधु कहते हैं। अपने बारे में साधु लोग नहीं सोचते, दूसरे के विषय में सोचते हैं। तो दूसरे के विषय में यही एक पशु के विषय में सोचेंगे, क्या उसको डिवोटी बना सकते थे? इस सोचने की बात है, क्या वो माला जप करता है? अवश्य परोपकार करना चाहिए, लेकिन परोपकार का मतलब यह नहीं होता है कि केवल भौतिक आवश्यकता की पूर्ति किया जाए। वो भी पशु जैसे दिमाग वाले की जो कोई भगवान की भक्ति में आए नहीं और उसकी सेवा करें। तो वो कह रहे हैं कि साधु जन दूसरे का काम बनाने में चतुर होते हैं और उत्सम तीला आती, जिनकी मति पूर्णतः भगवान कृष्ण में लगी रहती है, वे भी कृपण सुहृद, वे भी दीनों का बंधु होते हैं, सुहृद होते हैं, दीनहीन पर दया करते हैं। और एवं विध अर्थ है, ऐसे अर्थ के लिए, मतलब मृग के पालन जैसे शरणागत के पालन रूपी अर्थ के लिए, ऐसे प्रयोजन के लिए गुरुतरान स्वार्थान अपनी उपेक्षा देते, अपने जीवन के गुरुतर स्वार्थों की भी उपेक्षा कर देते। तो ये भजन आदि जो है इसके आगे कोई महत्व नहीं रहता है, इतनी चेतना बदल गई। मृग के पोषण के लिए यदि हमारा भजन छूट रहा है, नियम छूट रहा है, तो पहले के लोगों ने भी ऐसा छोड़ा है, कोई मैं नया काम नहीं कर रहा। एक तो पतन हो गया और उस पतन में ही गौरव बुद्धि हो गई है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, यह है मन का कुतर्क। मन इस तरह समझने नहीं देता, गलत भी हो रहा है लेकिन ऊपर से मन कहता है नहीं मैं ही ठीक हूं, और अपने ही दल में पूर्व के आचार्यों को भी शामिल करता है कि ऐसा पहले के लोगों ने किया, गुरुतर से गुरुतर स्वार्थ की उपेक्षा लोगों ने किया है शरणागत की रक्षा के लिए। तो मेरा जो भजन छूट रहा है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, किस तरह शक्ति हो गई। और इति कृतानुसंग असन शयन अटन स्थान असन आदि सहमृग जमुना स्नेहानुबद्ध हृदय आश, इस प्रकार से आसक्ति हो गई। अनुसंग मतलब आसक्ति, आसक्ति हो गई और बस शयन असन शयन अटन स्थान असन आदि आसन, जब बैठते थे तो मृग को साथ में लेकर बैठते, गोद में लेकर बैठते थे। पशु था कभी भी उसकी मां भी गोद में नहीं ले सकती थी उस तरह से, जिस तरह गोद में रहकर बैठते थे। और शयन सोते थे तो उसको छाती से लगाकर सोते थे, और वो भी विश्वास करके वो भी सो जाता था। शयन और आटन जब घूमते थे तो उसके साथ, स्थान खड़ा होते थे तो उसके साथ, औसन खाते थे तो उसके साथ, बल्कि उनका सारा भोजन जूठा कर देता था फिर भी सौभाग्य मानते थे। पूजा करते थे और पूजा के कुश को और फूल को गंदा कर देता था, मुंह से छू देता था, तब भी वो दोष दृष्टि नहीं करते थे। इस तरह से बुद्धि हो गई। तो घूमते समय, चलते समय, खड़ा होते समय उसी के साथ रहते थे, स्नेहानुबद्ध हृदय, स्नेह का अनुबंधन लग गया उनके हृदय में उसके साथ, स्नेह का बंधन। वो जहां जाता था जाते थे, ले जाते थे, घूमते थे, कभी डरते थे कि यहां छोड़ करके जाऊंगा तो बाघ आकर खा जाएगा, उसके बिना जा भी नहीं सकते थे, उसी को देखना छूना चिंतन करना इस तरह से उसमें आ सकती हो। कल कभी भगवान की पूजा के लिए लकड़ी लाने जाते थे, फूल फल घास या पत्ता कंदमूल, तो उसको साथ में लेकर जाते थे, आश्रम पर छोड़ना ठीक नहीं, हमेशा साथ में रहना। इस तरह से साथ में रहते रहते उनका पूरा स्नेह बंधन हो गया और सारे नियम छूट गए भगवत भजन के। अभी इनकी आसक्ति का वर्णन सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से करेंगे। तो यह एक इतिहास है, हमें इतिहास के आलोक में भक्ति के चढ़ाव उतार को समझना चाहिए। कल शाम को कथा हो रही थी कितनी ऊंची भक्ति इनकी थी और आज देखिए क्या हुआ। कृष्ण की भक्ति छोड़ने में ही गौरव बुद्धि कर लेते हैं, ऐसे छोड़ते हैं कोई बात नहीं, बहुत से लोगों ने छोड़ा है, मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में इसी अज्ञान में है, वो जो करता है उसी को सोचता है बस आई एम क्वाइट फिट, जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक। और उस शास्त्रों का उदाहरण भी अपने अनुकूल ले लेता है। शास्त्र तो सभी प्रकार की बातें कहते हैं, सभी बात कहते हैं, तो जो अपनी आसक्ति के अनुकूल होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, अथवा उसका अर्थ परिवर्तन करके समझ लेते हैं कि शास्त्र हमारे काम को कन्फर्म कर रहा है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इस तरह सब कुछ छोड़कर थोड़े भजन किया जाएगा, कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं ठीक नहीं, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, माया में रहो, परिवार में रहो, ये रहो वो रहो, रहे हम लोग भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, लेकिन हम लोगों का पॉइंट ये है कि प्रथम भगवत भक्ति रहे, उसको बाधित करके कोई कर्म नहीं करना, वह होता रहे इसके साथ और हो जाए ठीक है, और उसके लिए अगर इसको छोड़ा जाए तो ठीक है, लेकिन घर के काम के लिए भगवत भक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता, इतना ध्यान रखना चाहिए। तो आगे हम सुनेंगे राजर्षि भरत किस तरह से अधिक आसक्त थे। हरि हरे कृष्ण
जो भी दान लेंगे वो ऐसा व्यक्ति से लेना चाहिए जो धार्मिक तरह से पैसा कमाते हैं, अधार्मिक तरह से पैसा कमाए तो उससे दान लेके भगवान का सेवा में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम आजकल हम देखते हैं बॉम्बे में हम जो भी मंदिर के लिए जो भी पैसा लाते हैं ऐसा व्यक्ति है वो बहुत सारे ऐसा व्यक्ति है जो अधार्मिक तरह से पैसा कमाते हैं।
उसका समाधान भागवत में तो है नहीं। नहीं मैं टॉपिक पूछने के लिए कहा, व्यवहारिक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। शास्त्र के वाक्यों में कोई असंगति हो उसे पूछ सकते हैं, व्यवहार की बातों को एडजस्ट करना बड़ा कठिन है, ये प्रश्न नहीं पूछ सकते।
जो भरत महाराज जी का,
भरत महाराज का जी,
लेकिन प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में एक जगह में लिखते कि उन्होंने गुरु का आज्ञा पालन नहीं किया उसलिए पतन का कारण हुआ कुछ ऐसा, तो ये संदेह परपोर्ट में लिखा है प्रभुपाद जी ने।
नहीं, उस परपोर्ट का आशय ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए, हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे पतन भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो सामान्य नीति है तो ऊपर ये लिखा है कि गुरु की आज्ञा के अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन तत्वतः राजर्षि भरत ने गुरु की आज्ञा के अवहेलना किया यह बात नहीं है। एक बात है कि वे सत्संग में जीवन नहीं बिता रहे थे और कुसंग में पड़ गए, सत्संग उनके लिए सुलभ नहीं था, लेकिन गुरु की बात आज्ञा की उन्होंने अवहेलना की हो ये बात तो
हर कोर्ट में लिखा है प्रभुपाद जी ने भागवत एक्सप्लेन।
हाँ, लेकिन वहां वास्तव यह है कि साधु संग करना चाहिए। मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं तो अपने समाज से हम हो सकता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साधु समाज रहता है तो बताता कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, इस पशु को हटाइए आश्रम से, इसको छोड़ दीजिए बन में, किसी से पूछे नहीं, कंसल्ट नहीं किए, अगला करके रख लिए। इस तरह से किसी व्यक्ति को पूछना चाहिए, अपने घर में कुछ ला करके रख देते हैं, पूछना चाहिए बड़े लोगों से कि रखे या नहीं रखे। लेकिन कुत्ता के विषय में तो पूछना भी नहीं चाहिए, ऐसे पूछ रहे
ऐसी परिस्थिति हम लोगों के सामने आ जाए
जी,
तो उस परिस्थिति में यदि हिरण के बच्चे के जगह पर कोई नवजात शिशु हो या गाय का बछड़ा हो और हम जप कर रहे हों, क्या ऐसी परिस्थिति में हम अपना जप करते हुए भी उस को थोड़े समय के लिए कम से कम बचा सकते हैं?
हाँ, निश्चित ये करना ही चाहिए। राजर्षि ने जो कुछ किया वो धर्म, भक्त कोमल हृदय का होता है, दया होती है, इस तरह से किसी को अपने सामने मरते हुए देह करते पत्थर हृदय नहीं बना रह सकता। भजन करते हुए क्या अगर थोड़ी देर के लिए भजन छोड़ना ही पड़े तो ये काम करना चाहिए, और इससे ये डरना नहीं चाहिए कि हमारी दशा राजर्षि भरत जैसी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब अति मात्रा में नहीं होना चाहिए, जिन ही नियम छूट रहा हो ज्यादा तो समझ लेना चाहिए खतरा हो रहा है। वो अपने घर में बच्चा हुआ है और हम सोचे कि हम इसका पालन ना करें छोड़ दो क्योंकि हमारी भक्ति छूटेगी, ये तो बुराई हो गई, तो दोष हो गया। बच्चा है तो बच्चा का पालन करेंगे, स्त्री है स्त्री से स्नेह करेंगे, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, सीमा तक की है, इसके बाद अपने जीवन का जो कर्तव्य है वो किए। इस प्रसंग से ये नहीं मतलब है कि बस कुछ भी न करे, चाहे हमारे सामने कोई मर रहा हो कुछ भी कर रहा हो कोई भी दुखी दुखी कुछ भी हो हम ना करें, तो अपनी भक्ति कर हम कर भी नहीं सकते, बस कर भी नहीं सकते, हम अपनी आवश्यकता से ही इतना बाध्य हैं कि हम 24 घंटे भजन कर नहीं सकते, इसलिए उस अवसर पर रक्षा करनी ही चाहिए।
हम देखते हैं कि जैसे कि भरत महाराज का पतन हुआ, उसमें बताया जा रहा है कि भगवान की व्यवस्था थी। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे स्कूल सोसाइटी में भी कुछ प्रारंभिक काल में कुछ पतन हुए, क्या प्रारंभिक काल में अभी तक कुछ पतन हुए, तो उसको किस तरह से समझा जाए कि कुछ भगवान की व्यवस्था थी जिससे कि आगे की आने में
मन की व्यवस्था थी। वो मन की व्यवस्था है, वो भगवान की व्यवस्था नहीं
है। उससे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा लेना चाहिए,
क्यों नहीं, शिक्षा तो लेनी ही चाहिए, वो सब भगवान की व्यवस्था नहीं है। भगवान की व्यवस्था बहुत उच्च भक्त के लिए होती है। हम अपने मानसिक धरातल पर हैं, मन में संसार प्रवेश कर गया, मन संसार अच्छा लगने लगा, गिर गए। वो गिरे तो कोई बहुत ऊंची स्थिति से नहीं गिरे, वो समान स्थिति से ही गिर गया। ऐसा नहीं समझे कि वो प्रभावश हो गए थे और गिर गए, ये बात नहीं, बहुत छोटे ही स्तर से गिरे। इसलिए वो मानसिक धरातल से गिरे। हाँ, माया के बस में रहता है, रजोगुण के बस में रहता है, कामा ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्र। दो तरह के भगवान की शक्ति है, हमारा मन बुद्धि या माया आत्मा, या तो हम स्वरूप शक्ति के कंट्रोल में रहेंगे या महामाया शक्ति के। तो इस समय जो भी मन कर रहा है वो महामाया शक्ति के कंट्रोल में काम कर रहा है, और जब हम मुक्त हो जाते हैं तब भी हम कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन स्वरूप शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं। मन अपने बस में नहीं है, माया के बस में है। जब वो ईश्वर को ईश्वर की शरण में जाता है या गुरु की शरण लेता है, वैष्णवों की शरण लेता है, तो वह फिर अपने धरातल पर काम नहीं करता है, महामाया के कंट्रोल से मुक्त होकर के स्वरूप शक्ति के अंदर काम करने लगता है। मन तो चंचल अपने बस में नहीं है। जी हाँ,
जैसे कोई रहा है तो ये मन प्रेरणा होती है भावक जा।
जी जी जी, तो मन जो है वास्तव में, जो व्यक्ति मन को अपने बस में रखते हैं तो मन उनका मित्र हो जाता है, बस में किया हुआ मन अपना मित्र होता है, और जब हम मन के बस में रहते हैं तो हमारा शत्रु होता है। तो आपको भागवत में लाने वाला वास्तव में मन है, भागवत में भजन में भगवान के दर्शन के लिए भी मन है, लेकिन वह मन अपना मित्र का काम करता है। एक ही व्यक्ति है, जब इसको अपने बस में रखेंगे तो आपका हित करेगा, और इसके बस में हो जाएंगे तो आपकी दुर्गति करेगा। ये भागवत में लिखा गया है, गीता में भी भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है तो उनका मन उनका मित्र होता है, और नहीं अगर मन के बस में हो गया तो वो दुश्मन का काम करेगा, अहित का काम।
लेकिन इसको जज कैसे किया जाए कि मन हमारे बस में है कि नहीं, हाउ टू जज इट,
मन हमारे बस में है कि नहीं, इसको हमें देखने से पहले देखना होगा कि हम भगवान के बस में है कि नहीं। हम यदि भगवान के बस में है हम तो हम भगवान के पीछे चलेंगे, गुरु के पीछे चलेंगे, मन के पीछे नहीं चलेंगे। तो अपनी स्थिति मिलाकर देखनी चाहिए कि हम किसकी आज्ञा से चल रहे हैं। अगर भगवान की गुरु की आज्ञा से चल रहे हैं तो ठीक है, मन हमारे पीछे चल रहा है, और यदि हम भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो निश्चित है कि हम मन के कमांड में हैं। ये लक्षण मिलाकर को देखना चाहिए।
हरे कृष्ण महाराज।
ज्ञान मार्ग में कोई ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मार्ग में प्रभुपाद ने बताते हैं कि शादी का कोई मौका नहीं।
क्या मौका?
शादी विवाह ज्ञान मार्ग में।
ज्ञान मार्ग में
विवाह का कोई
विवाह?
हाँ।
अच्छा अच्छा, हाँ राइट, ठीक ठीक। हाँ,
और ज्ञान मार्ग में भी पतन हो सकते हैं, खास करके जो ब्रह्मचारी हैं।
हाँ,
तन भी मतलब जो देवता लोग इंद्र हैं उनके ऊपर कुछ प्रभाव गिराता है, वो गिर जाता है। हम भी देखते हैं वैष्णव संप्रदाय में भी ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ है, वानप्रस्थ संन्यास, तो इसमें भी वो प्रवाह है क्या गिरने का जैसा ब्रह्मचारी?
ऐसा है कि ज्ञान मार्ग जो है वह तो एकाकी पथ है और उसमें वो खुद ही ज्ञानी सोचता है कि मैं ब्रह्म हूं और दूसरे को भी ब्रह्म में देखता है, तो ब्रह्म से विवाह वो क्या करेगा? एक ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा होता ही नहीं है, तो उसमें गिरने की बहुत संभावना होती है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि जो मानव की क्रियाएं हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, गृहस्थ हो, इन क्रियाओं से भक्ति योग का साम्य है, मेल है। भगवान की नित्य लीला में भी ये काम करना है, वो दूसरे स्वरूप शक्ति के अंदर होगा, लेकिन उस तरह से गाना, बोलना, खाना, नाचना, किसी के लिए काम करना, ये उस लोक में भी है, इसलिए ये अपना स्वरूप है। इसमें गिरने की बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि यही साधना का काम करता है वास्तव में। जैसे मान लीजिए कुकिंग है, तो वही कुकिंग भोजन बनाना यदि हम कृष्ण के लिए करने लगे तो स्वाभाविक है, लेकिन जहां बिल्कुल खाना ही नहीं है वहां दूसरी बात होगी। तो हम भोजन बनाने द्वारा, पेंटिंग द्वारा, पुस्तक छापने द्वारा या फेस्टिवल द्वारा, जप द्वारा, जैसे तैसे हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि हृदय वैसे चाहिए। बल्कि जो लोग असक्त हैं, माया में हैं, वो ज्यादा भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ऑलरेडी वो प्रवृत्ति आ गई है किसी में असक्त होने की, तो वो जल्दी असक्त हो सकते हैं कृष्ण में। केवल ट्रांसफर करने की जरूरत है उनकी धारा को, केवल मोड़ना। लेकिन जो ज्ञानी है, जिनका हृदय काठ का बना हुआ है, तो किसी से प्रेम करने जानते ही नहीं, इसीलिए भगवान से भी नहीं सीख पाएंगे, कठिन है। ज्ञानियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन अन्य भक्ति मार्ग में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी को कोई भेद नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने अपने ढंग से करेंगे।
जब कोई व्यक्ति भक्त नहीं है और उनके विचार, उनके मन में जो विचार उठता है कि साधु संगति करनी चाहिए, ये भागवत सुनना चाहिए, तो वो माया के विचार माना जाएगा?
नहीं, जब भगवान की ओर कोई विचार प्रेरित कर तो वो माया का विचार है ही नहीं। माया का मतलब ही है कृष्ण से दूर करना। जो कृष्ण के तरफ, भक्तों के तरफ पढ़ने का विचार आवे तो वो माया नहीं। माया का मतलब कृष्ण से दूर विचार जाए, दूर दृष्टि जाए।
पर यहाँ पर प्रश्न महाराज जी, जरा अभी भी मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि कोई व्यक्ति गया ही नहीं भगवान की ओर और उनके माइंड में भी कभी विचार उठता है, इस जन्म में कभी मंदिर नहीं गया
जी,
तो उनके माइंड में विचार उठेगा तो वो कैसे उठेगा? माया
नहीं, नहीं वो भी कोई जदृच्छा उसको कहते हैं, पूर्व जन्म के साधु संग से ये शुभ कर्म के प्रभाव से ऐसी मति आती है, माया के कारण नहीं आ सकती। माया अंधकार की तरह है, कृष्ण से विमुख रखना है उसका काम है, तो उसके कारण नहीं, पूर्व जन्म के साधु संग या सुकृत से वो विचार उत्पन्न होता है आपका संग, माया से उत्पन्न नहीं हो सकती, किसी न किसी शुभ है कर्म से, शुभ कर्म तो साधु सेवा से, संगति से उत्पन्न होता है, भले इस जन्म में नहीं देखा गया, लेकिन जीव तो बहुत काल का है ना, बहुत बार जन्म होगा, कभी भगवान का प्रसाद भी खाया होगा, किसी भी जोनी में किसी साधु का शब्द सुना होगा, स्वर्ण किया होगा, सेवा हो गई होगी, तो आकर के वो संस्कार उस मौके पर अपने को प्रकट करता है, इसलिए वही कारण है। माया कभी भगवान की तरफ नहीं भेजती।
आज तक आप कर रहे थे भारत भरत कई तरह के यज्ञ करते थे,
क्या
यज्ञ? यज्ञ
जब
उसमें एक अश्वमेध यज्ञ है, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा है प्रभुपाद जी की बुक में, जिसमें अश्व की बलि दी जाती है घोड़े की,
तो उस वक्त भी ये बलि पशुओं का
घोड़े को जग कुंड में डाला जाता था और नया बन करके निकाला जाता था। शास्त्र कहता है तो वास्तव में वह बलि नहीं, वो मारना नहीं था, उसको नवजीवन देना था, ये शास्त्र कहता है।
जो बलियां दी जाती हैं देवताओं की पूजा में,
किनकी पूजा में?
आजकल कई लोग बलि देते हैं देवताओं को खुश करने के लिए, बकरे की बलि।
हाँ, बकरे की बलि जो लोग देते हैं ये भी शास्त्र में लिखा गया है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो उच्छृंखल मांसाहारी है, उच्छृंखल बिना मांस खाए नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए विधान है कि तो बकरा महीना में एक दिन खा लो, गाय को छोड़ दो कम से कम। पाप है लेकिन बहुत बड़े पाप से बचाने के लिए ये पाप करने को कहा जाता है। अगर मान लीजिए जो गाय खाने वाले हैं वो मछली खा करके संतोष करें तो बहुत अच्छा है, तो उनको वेजिटेरियन घोषित कर दिया जाएगा। गाय खाते हैं उसको छोड़ करके मछली खाकर रह जाए। नहीं, वैसी तपस्या संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, उतना हम लोग कर नहीं सकते, उतना हजार वर्ष जिएंगे ही नहीं, क्या करेंगे, उतनी शक्ति नहीं। एक दिन एकादशी का उपवास करने में तो नानी मरती है, क्या पाप करेंगे, है कि नहीं। हम लोग जो खड़े होते थे तो हजारों वर्ष खड़े रहते थे, सोते नहीं थे, हम लोग तो बिना सोए रोज नहीं रह सकते, क्या तप करें। हमारे लिए तप यही है कि हम शुद्ध आहार करें, भगवान का जप करें, उनका ग्रंथ पढ़ें, सेवा करें, प्रचार करें, हमारे लिए तप यही है। वो तप करना भी नहीं है, कर सकते भी नहीं।
रामायण में भगवान ने बोला था, राम भगवान ने, कि जो शरणागत को छोड़ देते हैं उनको देखने से भी पाप लगता है।
सही है, शरणागत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा हमारे घर में जन्म लिया तो माता पिता की शरण में आया है, तो उसको फेंक दे, कोई सेवा न करे, तो ऐसे आदमी का मुंह देखने पर भी वास्तव में पाप लगेगा, तो शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन उस त्याग नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 24 घंटा सिर पर धोया करें, वो 10-20 वर्ष का हो जाए तब भी बस टांगे हुए चले, शरणागत वत्सलता का ये मतलब नहीं होता। शास्त्र में लिखा गया है कि 9 बजे तक, सवेरे से 9 बजे तक अपने परिवार के लोगों को शत्रु समझे, उनसे बात न करे, अपनी पूजा पाठ करे, भगवान की भक्ति करे, और 9 बजे के बाद तब उनको अपना बंधु समझे, मतलब उनके लिए कमाए, ऑफिस जाए, दुकान में जाए, और शाम के समय फिर उनको शत्रु समझे, रात के समय सोने से पहले उनसे भेंट नहीं करना चाहिए, भगवान में चित्त लगाकर सो जाना। तो 10 बजे से लेकर के लगभग 7 बजे तक वे हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, बच्चा है, स्त्री है, लेकिन सोने से पहले और जगने के बाद केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका नहीं, ऐसा संस्कृत होता है। जो
उन्होंने आज श्री प्रभु ने जो शंका उठाई उसके बारे में
मैंने
सुना है और पढ़ा है कि पशु बलि के समय जो ब्राह्मण इतने पवित्र थे तो पशु योनि में से उनको ऊर्जा गति जाने का संकल्प करते थे, तो मनुष्य योनि में से वो भक्ति मार्ग से लग जाए। अब कलयुग में कोई करता है संकल्प, खाली खाने को चाहते, इसके लोग पाप योनि में जाते हैं, खाने वाले पाप योनि में इसके लिए जाते हैं, पशु का कल्याण की कोई इच्छा करते ही नहीं है, हम खा रहे हो। बकरे के बारे में बात करते, बकरे का ऊर्जो गति योनि में गति हो गए, ऐसा संकल्प कोई करता ही नहीं, क्रिया ही नहीं करते, इसके लिए वो लोग पाप खाते हैं। हरे कृष्ण, आपका क्या कह रहे हैं?
मैं समझा नहीं आपकी।
अरे बोल रूपात की जय भागवत भक्तन।
हरे कृष्णा। उनका आनंद और अधिक बढ़ गया अकेले होने पर, क्योंकि भगवत आराधना में रहते थे। एकलह शब्द यहां बहुत महत्वपूर्ण। राजर्षि भरत जब घर छोड़े तो ऐसा नहीं कहेंगे दस बीस चेला चलो मेरे साथ मेरा सामान ढोया करना। अरे कुछ त्याग होना चाहिए, अभी अकेले भी रह करके देखना चाहिए कैसे रहा जाता है कि नहीं। राजर्षि थे, पूरे विश्व के अकेले रहने लगे। हम लोग दूसरे दिन भी अकेले नहीं रह सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, सब कुछ छोड़ा जाता है। ये देखिए राजर्षि की विशेषता, सब कुछ छोड़कर एकला हो गए, अकेले हो गए। उल्हाश्रम उपवन है, उपवन में रहते थे, वन में रहते थे। तो वहां क्या करते थे? भगवत आराधनम इहमान समीह माना, सम ई माना, सम्यक ई माना, भगवान की आराधना करते रहते थे, पूजा करते रहते थे। किस चीज से पूजा करते थे? विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि और कंद मूल फलोपहारश्च। विविध पुष्पों से, किसलय नए नए पत्तों से, तुलसी दल से और अम्बु भी जल से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इससे पूजा कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो विविध कुसुम किसले तुलसी काम्ब भी कंद मूल फलोपहारश्च भगवत आराधनम समीह मान। जब राजा थे तो बड़े बड़े यज्ञों से पूजा कर रहे थे, तो पूजा करने का स्वभाव था, लगे रहते थे आनंद से। सत्र सत्र अध्याय 8 है, श्लोक 13। विषक्तमते प्रणय भर हृदय, अति प्रणय भर हृदय, कार्पण्या स्कंधेन उद्वहति एव उत्संगे पुरसी च आधाय उपलालयान मुदं परमा अवाप। कैसी आवाज है? पतिसुच मुग्ध भावेन तत्र तत्र विषक्तम् अतिप्राय भर हृदय, कार्पण्या स्कन्धेनोद्वहति एवं उत्संगे उरसी चाधाय उपलालयं मुदं परमामवाप। पतिसुच मुग्ध भावेन तत्र तत्र विषक्ता अतिप्राय भर हृदय, कार्पण्या स्कन्धेनोद्वहति एवं उत्संगे उरसि चाधाय
शुक्लानयन मुदम परमा मवाप पथ प्रत्येक पथ में च और मुग्ध भावेन बाल्य स्वभाव के कारण अज्ञ होने के कारण तत्र तत्र जहां तहां विषक्ता फंसे हुए अति प्रणय भर हृदय अच्छे स्नेह से भरे हुए हृदय वाले कार्पण्या दीनता बस मृग का वियोग नहीं सह सकने के कारण स्कंधेना कंधे से खुद बहाते ढोते थे एवं ऋषि प्रकार उत्संगे गोद में उरसी वक्षस्थल में च और आधाया रखकर उपलालयन अधिक लालन करते हुए मुदाम आनंद परमा अति अवापा पाते थे। कल कथा हुई थी कि राजर्षि भरत भगवान की पूजा करके परम निर्वृत्ति मवाप परम आनंद प्राप्त करते थे और आज आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि मृग को अपनी गोद में रखकर अपने कंधे पर रखकर और अपनी छाती में रखकर परमा मुदम अवाप जी परमा निर्वृत्ति और परमा मुदम दोनों ये कही है। भगवान की पूजा करके जो आनंद उनको मिला था उतना ही आनंद अब मृग के सामने से मिलने लगा। इतनी चेतना गिर गई। पथिशु च मुक्त भावे न तत्र तत्र विषक्तम विषक्तम। पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत, उनका हृदय मृग शावक के साथ स्नेह बंधन में बंध गया। स्नेहानुबद्ध हृदय सदा स्नेह बना रहता था, वो तो किस तरह से स्नेहानुबद्ध हो गए उसी का वर्णन आगे कर रहे हैं। कुश स्वामी फल क्लास आदि लाने जाते थे तो उसको साथ में ले जाते थे। अब तेरह श्लोक से हम चालू कर रहे हैं। हरिण चलने में तेज गति से चलते हैं, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है वो बहुत बड़ी छलांग मारते हैं, चल सकते हैं पैदल, लेकिन पथ पथ में पथिशु प्रत्येक पथ में जब राजर्षि भरत चलते थे तो वह हरिण मुग्ध भाव से कहीं कहीं विषक्त हो जाता था। विषक्त का अर्थ फंस जाना, रुक जाना, वो कहीं मोमल त्रिड़ चढ़ने लगता था या कहीं महा कीचड़ कर्दम के ऊपर फंस जाता था, उसको पता नहीं चलता था। बच्चा था, मुग्ध भाव मतलब बाल्य भाव, जो पता नहीं था कि मैं यहां घास चढ़ने जा रहा हूं कि मेरा पैर फंस जाएगा, तो कभी कभी फंस जाता था कीचड़ में पंख में, तो इसको विषक्तम कहेंगे। अथवा कहीं कहीं घास चरने में रुक जाता था, चलता नहीं था। तो महाराज भरत है इतना स्नेह उस हरिण से करते थे कि उसके रुक जाने पर ये विचार करते थे कि वो थक गया, फंस गया। अरे तुमको इतना मालूम नहीं है कि यहां पंख था, तुम इतना भव्य हो गए, उठाकर गोद में रख लेते, और इसको फंसने नहीं देंगे, अब इस चलने में थक गया है, उसको उठा करके चलते। स्कंध है न उद्बहती, स्कंध से उद्बहती, उद्बहती में तो उठा करके बहती बहन करते थे, कंधे पर लेकर के ढोते थे। और इसलिए वो चलने में बेचारा कीचड़ में फंस जा रहा है, या कहीं लता पता में उलझ जाता था, आगे नहीं बढ़ पाता था, तो उठा करके गोद में रखते, स्कंध पर रख लेते। ये आसक्ति क्यों रख लेते थे? कार्पण्य, कार्पण्य कहते हैं दीनता को, मतलब उस मृग शिशु के वियोग को वो एक मिनट भी नहीं सह सकते थे, इसको दीनता कहते हैं। जब कोई मनुष्य किसी के बिना नहीं रह सकता है तो कहेंगे कि लाचार है, दीन है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, कृपण हो गए। वास्तविक बात है कि जब उसको वो छूते थे या देखते थे, अपने शरीर पर रखते थे, तब उनको परमा मुदम अभाव, तब परम सुख मिलता था। वो भगवान से जो सुख मिलता था शायद उससे भी बढ़ गया है। ये दशा हो जाती है। अच्छा, एवं इसी तरह से कभी कभी कंधे पर न लेकर के गोद में रख लेते थे, उत्संग में उठा करके गोद में रखते थे, तो हमारा बच्चा चलने में असमर्थ है, चला नहीं जा रहा है, कोमल कोमल पैर थक गए, तो मैं किस दिन के लिए, तो उठाकर गोद में रख लेते। और उरसी चल आता है, जब चलते थे तब गोद में रखते थे, और बैठते थे तब छाती में रख लेते थे, उरसी आधाय। ऐसे जैसे बच्चे को हम लोग रखते हैं गोद में, वैसे रख लेते थे। वास्तव में ये सारी भावनाएं मन में है, किसी में सुख नहीं है न किसी में दुख है। मन मान लेता है कि इस व्यक्ति से हमको सुख मिल रहा है और दूसरे से दुख मिल रहा है, तो उनके मन में ऐसा अभिनिवेश हो गया था, इसलिए उसको उरसी और उत्संगे आधाय परम सुख पाते थे। इस संसार में वास्तव में यह एक भौतिक सुख है, विशेष करके अपने पुत्र को अंक में रखने का सुख है, इस संसार के सुखों में बहुत बड़ा सुख है। महाभारत में लिखा गया है कि जब शकुंतला अपने पुत्र भरत को, मतलब चंद्रवंशी भरत को, पूर्ववंशी भरत, उनको ले करके जो महाराज दुष्यंत के पास गई, वो छोटा बच्चा था भरत, तो शकुंतला महाराज दुष्यंत से प्रार्थना करने लगी कि आपका बच्चा है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप हमें स्वीकार कीजिए, आपसे जन्मा हुआ है। तो महाराज ने अस्वीकार कर दिया, अरे नहीं, यह मेरा पुत्र नहीं है, जबकि वो उनका पुत्र था, गंधर्व विवाह किया था वन में उन्होंने, लेकिन वे चाहते थे कि जनता के सामने शब्द आवे, अगर हमारा सही संबंध होगा तो देवताओं को बोलना पड़ेगा कि यह मेरी पत्नी है, वो इस आश्वासन में थे। तब तक आकाशवाणी हुई कि महाराज यह आपका पुत्र है और यह आपकी पत्नी है, धर्म के अनुसार आप इसे स्वीकार कीजिए। आकाशवाणी होता, आकाशवाणी के पहले शकुंतला उनसे कहती है कि ये प्रियतम, इस संसार में जितने भी सुख है, सबसे बड़ा सुख है अपने देह से जन्मे हुए पुत्र को अपनी गोद में रखना। शकुंतला कहती है आप इस सुख के लिए लालायक नहीं है, कैसा आपका कर्कश जीवन है। वास्तव में यह सुख है, इस घर गृहस्थी में यदि यह सुख नहीं होता, अपनी पत्नी से बात करने का, मिलने का, हंसने का, और बच्चे को गोद में लेने का, तो इस घर गृहस्थी में दुख के अलावा और कुछ नहीं, सुख केवल इतना ही है। तो उस समय आदमी सारा दुख भूल जाता है। भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी जी से कहा है परिहास में, हे प्रिय, गृहस्थों के लिए तो बस इतना ही सुख है, कभी अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठ कर मजाक कर लिया, परिहास कर लिया, कुछ सुख के साथ समय कट जाता है। नहीं तो हम लोगों के ऊपर तो केवल संसार का भार है। वे ऐसे मजाक करने लगे कि तुम भूल से मुझको पति बना ली हो, मैं तो राजा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, अभी भी समय देता हूँ, तुम जाकर दूसरे से विवाह कर लो। इतनी बात कहने लगे रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई गिर कर सुनते। वो बहुत बड़ा प्रसंग है दशम स्कंध में। तो अंत में रुक्मिणी जी ने कहा कि तो इस तरह का परिहास किया जाता है, ऐसा क्यों किए? और उसी पर भगवान कहते हैं कर यही तो सुख है, दो चार बात कह करके हंस लिया जाए, परिहास किया जाए, नहीं तो और क्या सुख है। ये गृहस्थों को भगवान शिक्षा दे रहे। तो बच्चों को हृदय में रखने का सुख है, बड़ा सुख है। श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ परमानुदम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परमान सर्वश्रेष्ठ आनंद पाते थे। आश्चर्य है कि अपने शरीर से जन्मे हुए पुत्रों को छोड़ करके आए हैं और एक एनिमल को गोद में ले करके और परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक जगह लिखा गया है किताब में, बंदायू बांध है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो हरि बाबा ने बांध बनाया था तो वहां एक व्यक्ति रात में सोया था, जाड़े का दिन था, जाड़े का दिन था, दो कुत्ते के बच्चे छोटे छोटे उसी ठंडा से कष्ट पा रहे थे। तो एक महात्मा से साधु थे, वो बच्चों को लेकर के और अपने गोद में रख लिए कुत्ते के बच्चों को और ऊपर से रजाई ओढ़ लिए। तो किसी ने उनको बुलाया कि आई आई यहाँ काम है, तो कहते हैं रुको अभी मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो कहा हाँ हमको भगवान मिल गए हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ पूछने वाले कि सचमुच भगवान प्रकट हो गए हैं, क्या हो गए? तो बाद में जब रजाई हटाए तो देखे कि ये दो भगवान उनके छाती पर खेल रहे हैं, वो दो कुत्ते। इस तरह से ये जो मायावादी साधु है ये लोग तो किसी को ही भगवान कह देते हैं, उनकी आसक्ति थी उनको छू करके वो आनंद पाते थे, कुत्ता को आनंद हो या न हो। तो राजर्षि भरत है कि मिथ्या बुद्धि हो गई, इसके संग से मुझे सुख मिल रहा है, और क्षण भर भी उसका बीजोग सह नहीं पाते थे। वास्तव में इस संसार में जो भी प्रिय है और प्रिय से मिलने वाला सुख है वो सब अपने मति का विलास मात्र है, उसमें और कुछ है नहीं। मति विलसित एक मान्यता पर है। तो मैं बहुत व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, हमारा कोर्स बहुत पीछे छूटा हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। आप सुधे श्रोता हैं, विद्वान हैं, आप लोग समझ लेंगे। मैं बहुत परिश्रम करके लिखा हूं प्रभुपाद जी के प्रभाव से और आचार्यों की टीका से। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल शुद्ध कहूं, लेकिन फिर भी मायाबद्ध जीव होने के कारण कुछ न कुछ त्रुटि कमी आ ही जाएगी। तो उत्तम श्रोता का लक्षण लिखा गया है, कहा गया है कि वे सूप के समान होते हैं। सूप समझते हैं ओसाया जाता है अनाज या फटका जाता है। तो सूप है अनाज को अपने भीतर रख लेता है और कूड़ा करकट को बाहर फेंक देता है। तो उत्तम श्रोता सूप के समान होते हैं, वक्ता के मुख से निकले हुए दोषों को और कमियों को ग्रहण नहीं करते और इसमें जो भी अच्छी बातें निकलती हैं उसको हृदय बैठा देते हैं। और जो निकृष्ट दोषदर्शी श्रोता होते हैं वे चलने के समान होते हैं, चलनी अनाज चलना होता है। तो अनाज को तो नीचे गिरा देती है और कूड़ा करकट सब हृदय में रख लेती है। हमको तो विश्वास है कि आप सूक्ष्म श्रोता है, आप हमारे दोषों को ग्रहण नहीं करेंगे। दोष तो आएगा इसमें संदेह नहीं, लेकिन विद्वान लोग जो दूसरों के दोष को नहीं देखते हैं वे सुधार करके ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्रियायाम निर्वर्तमानायाम अंतराले अपिथाय जदैनम अभिचक्षित तरही वाव स वर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मै आशीष आशास्ते स्वस्तिष्ठा वत्स ते सर्वत। इतना आसक्त थे यहां तक कि जब भगवान की पूजा करते थे क्रियायाम निर्वर्तमानायाम, जब उनकी क्रिया चलती थी भगवान की पूजा चलती थी, देह का स्वभाव होने से पूजा करते थे, तो पूजा करते समय भी अथवा स्नान करते समय भी तिलक करते समय भी कभी भी एक मिनट दो मिनट के बाद ही वे उठ उठ कर देखते थे उसको। उठाय उठाय जदा एकदम अभिचक जीवन, इतना आसक्त थे कि उसको देखे बिना रहा नहीं जाता था। वो रखते थे सामने, लेकिन पशु का स्वभाव है, निकल करके कुटीर से आश्रम से बाहर हो जाता था, इधर उधर कुछ खाने लगता था या बैठता था, तो पूजा करते समय भी बीच बीच में अंतराले एवं अंतराले अपी, मतलब पूजा चलती थी उस समय भी उठाय उठाय पूजा छोड़ करके उठ करके जाकर देखते थे, और जब देखते थे तब भी वर्षपति भारत वर्ष के स्वामी राजर्षि भरत प्रकृतिस्थेन मनसा, तब उनका मन स्वस्थ होता था, बिना देखे निकल हो जाता था, और जब देखते थे तब मन प्रकृति में मतलब प्रसन्नता में आ जाता था, और देखते ही तस्मय आशीषय आशास्ते उसको आशीर्वाद देने लगते थे। स्वस्तिष्ठा वत्स, हे वत्स तुम्हारा स्वस्ति हो, तुम इसी तरह से पागुर करते रहो, इसी तरह से मुझे आनंद देते रहो, सुख से तुमको भगवान कृष्ण सुख से रखें जिसे तुम मुझको सुख देते रहो। तो डायरेक्ट कृष्ण सुख नहीं दे सकते इनको, तुमको सुख से रखें और तुम सुख से रहोगे तो तुमको देख देख करके मैं सुखी रहूंगा, ये आशीर्वाद दे रहे। और दो दो मिनट पर आशीर्वाद दिया करते थे जब ही देखे था स्वस्ति स्वाद वत्स, हे भगवान